आज है 31 मई दिन रविवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। सीरिया में बैरल बमों के हमलों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तराखंड बाढ़ के दौरान आपदा राहत कार्यों में हुआ घोटाला, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश।
अधिकारी के एक एक दिन में होटल में ठहरने का 6,750 रुपए बिल है एक आदमी का, और पर व्यक्ति खाने का बिल है 900 रुपए रोज का। उसमें कुछ नंबर उनके मिले हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल के और थ्री व्हीलर के, उनमें डीजल डलवाएगा।
कांग्रेसी नेता गिरधर गमांग ने दिया पार्टी से इस्तीफा। निर्देशक आनंद राय को कैसे आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का ख्याल?
तनु वेड्स मनु के और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बीच में रांझणा बनाई ताकि मैं जब वापस आऊं इस पे तो मेरे पास कुछ हो। रांझणा मैंने फिर से जी, फिर मैं आया रिटर्न्स पे तो शायद मेरे पास कुछ अच्छा इमोशन था देने के लिए।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। सीरिया के अलेप्पो प्रांत में सरकार ने कथित रूप से हेलीकॉप्टर से बैरल बम गिराए जिसमें 72 लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्रिटेन स्थित एक मानवाधिकार संस्था ने इसकी पुष्टि की है। संस्था के अनुसार 60 लोग अलबाब शहर में मारे गए हैं तो वहीं 12 लोगों की मौत प्रांत के अन्य इलाके में हुई। संस्था का कहना है कि सरकार द्वारा किया गया यह इस साल का सबसे बड़ा नरसंहार है। हालांकि सीरिया की सरकार हमेशा से कहती रही है कि उसने कभी भी बैरल बम का उपयोग नहीं किया। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में हुए एक आत्मघाती बम विस्फोट में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के अनुसार हमले में 28 लोग घायल हुए हैं। यह हमला मैदुगरी में एक मस्जिद में हुआ। कुछ समय पहले ही चरमपंथी संगठन बोको हराम के लड़ाकों ने मैदुगरी पर रॉकेट दागे थे जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने बोको हराम के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। स्वीडन की विदेश मंत्री मार्गेट वॉलस्ट्रॉम ने रूस द्वारा यूरोपियन यूनियन के लोगों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर जवाब मांगा है। इस सूची में स्वीडन के भी 8 नागरिक और कई अन्य देश के नेता और राजनयिक शामिल हैं। उनके अनुसार यूरोपियन यूनियन ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं शायद उसी के जवाब में यह कदम उठाया गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रूस से इस पर सफाई देने की अपील की। उन्होंने कहा,
हमने रूस से इस पर जवाब मांगा है और उनके राजदूत से पूछा है कि वो बताएं आखिर उनकी तरफ से ऐसा क्यों किया गया। हालांकि हमें लगता है कि यूरोपियन यूनियन ने जो कदम उठाए हैं वो रूस को पसंद नहीं आए और शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया। स्वीडन की विदेश मंत्री मार्गेट वॉलस्ट्रॉम के शब्द। अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद क्रीमिया के विलय और पूर्वी यूक्रेन में लगातार बढ़ते तनाव के लिए रूस को जिम्मेदार मानते हुए अमरीका और यूरोपियन यूनियन ने उस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें उनके कई नेता और राजनयिक समेत कई बड़े व्यापारी शामिल हैं। वेनेजुएला में हजारों नागरिकों ने राजधानी कारकास में एक शांति मार्च निकाला। यह सभी लोग पिछले एक साल से जेल में बंद विपक्षी नेताओं को छोड़े जाने की मांग कर रहे थे। इन नेताओं में दो पूर्व मेयर लियोपोल्डो लोपेज और डेनियल सेबलॉस शामिल हैं। इन दोनों पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों को उकसाने का आरोप था जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों ही नेताओं ने खुद को निर्दोष बताते हुए पिछले सप्ताह जेल में भूख हड़ताल शुरू की थी जिसके बाद उनके समर्थन में लोगों ने यह प्रदर्शन किया। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित की गई एक अनाधिकृत समलैंगिक परेड के दौरान 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में परेड को आयोजित करने वाले निकोलाई एलेक्सीव, कुछ राष्ट्रवादी मान्यताओं के लोग और ईसाई रूढ़िवादी गिरजाघरों के विरोधी शामिल थे। यह लगातार 10वां साल है जब अधिकारियों ने इस परेड को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, सीरिया में सरकारी हेलीकॉप्टरों के से गिराए गए बैरल बमों के हमले में 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। ये बैरल बम अलबाब इलाके में गिराए गए। अलबाब इलाका इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस हमले में मारे गए ज्यादातर लोग आम नागरिक थे। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं अमल चौधरी।
सीरिया के अलेप्पो प्रांत में सरकार ने कथित रूप से हेलीकॉप्टर से बैरल बम गिराए हैं जिसमें 72 लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्रिटेन स्थित एक मानवाधिकार संस्था ने इसकी पुष्टि की है। संस्था के अनुसार 60 लोग अलबाब शहर में मारे गए हैं तो वहीं 12 लोगों की मौत प्रांत के एक अन्य इलाके में हुई। संस्था का कहना है कि सरकार द्वारा किया गया यह इस साल का सबसे बड़ा नरसंहार है।
इस हमले में अधिकतर पुरुषों की मौत हुई है। संस्था के अनुसार जिस इलाके पर बम गिराए गए हैं वो चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है, जिसकी वजह से औरतें सार्वजनिक स्थानों पर ज़्यादा नहीं निकलती हैं। वहीं कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी हेलीकॉप्टर आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में बैरल बम गिराते रहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में पिछले साल जनवरी से अब तक कई बैरल बम गिराए गए हैं, जिनमें 3,000 से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं करीब 35 विद्रोहियों की भी मौत हुई है। सरकार ने इन आंकड़ों पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। सीरिया की सरकार हमेशा से कहती रही है कि उसने कभी भी बैरल बम का उपयोग नहीं किया। फरवरी में बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति बशर अल असाद ने बैरल बम के इस्तेमाल की बात से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने इन सभी बातों को अफवाह बताया था और कहा था कि हमारे पास कोई बैरल ही नहीं है तो बैरल बम कहाँ से होंगे। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2011 से राष्ट्रपति असाद के खिलाफ शुरू हुई बगावत के बाद अब तक सीरिया में करीब 2.25 लाख लोग मारे जा चुके हैं।
ये थे अमल चौधरी। और अब रुख करते हैं भारत का। बीते साल अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी रेडियो के जरिए मन की बात करते आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री अपनी इस मन की बात में अलग अलग विषयों को उठा लोगों से सवालों के जवाब भी देते हैं। वहीं कुछ आलोचकों का कहना है कि इससे समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हालांकि मोदी सरकार के एक साल पूरे होने से इस बार मन की बात अहम हो जाती है, क्योंकि आम जनता के अलावा विश्लेषकों की भी नज़र इस पर रहेगी। विश्लेषकों के एक आकलन के साथ संदीप राय।
मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन
खुद को जनता का प्रधान सेवक बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते साल अक्टूबर से हर महीने अपने मन की बात कह रहे हैं। मोदी ने कभी अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मन की बात कही तो कभी बोर्ड परीक्षाओं के बहाने छात्रों को संबोधित किया। जब बेमौसम बारिश से फसलें तबाह हुई और संसद से लेकर सड़क तक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध हुआ तो मोदी ने इस बहाने किसानों से भी अपने मन की बात कही। लेकिन विपक्ष मन की बात पर मोदी को आड़े हाथों लेता रहा है। वहीं आम आदमी, जिसे राजनीति से बहुत अधिक मतलब नहीं है, वो अपने मन की बात कुछ इस तरह कहता है।
अब योजनाओं के बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं पता कितनी इम्प्लीमेंट हुई कितनी नहीं हुई है। बाकी कांग्रेसी स्वभाव कांग्रेस की बात करते हैं, जो बीजेपी वाला बीजेपी बात करता है। कुछ लोग जो होते ना, जो दोनों तरफ पलटी मार देते, जहाँ अच्छा दिखता वहाँ पलटी मार देते है ना, तो वो लोग तारीफ करते हैं। और बाकी जो कांग्रेस ही, वो तो कहते हैं सिर्फ बोलने वाला और कुछ नहीं करता और कुछ किया भी नहीं है इस साल में, ऐसा बोलते हैं।
मध्य प्रदेश के शिक्षक उमेश पटेल की तरह सोचने वाले और भी लोग होंगे, और मोदी जब आज 8वीं बार अपने मन की बात कहेंगे तो एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर होंगे। लेकिन मोदी के मन की बात क्या किसी के मन को छूती है? क्या हर महीने मोदी के मन की बात सुनकर लोग उबने लगे हैं? विज्ञापन की दुनिया में एड गुरु के नाम से मशहूर प्रहलाद कक्कड़ कहते हैं,
ये टाइम ही बताएगा कि मोदी साहब की जेन्युइननेस है, वो कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ मीठी मीठी बात कर रहे हैं। और अगर सच्चाई नहीं होती तो अभी तक कोई सुनता नहीं उनकी बात। जो कॉमन मैन है, जो कश्मीर में बैठा है, जो जूरी तलाई में बैठा है, जो किसान है बेचारा, वो बिल्कुल घूर के सुन रहा है। आजादी से अब तक किसी ने कॉमन मैन को एड्रेस किया है? बोलने वाले बहुत हैं, बट द मिक्सचर ऑफ ट्रूथ और इच्छा जैसे वो डालते हैं, कोई नहीं डाल सकता।
लेकिन विज्ञापन की ही दुनिया के एक और जाने पहचाने चेहरे और स्तंभकार सुहेल सेठ प्रहलाद कक्कड़ की बात से सहमत नहीं है। सुहेल सेठ कहते हैं,
मोदी जी की जो ये मन की बात है ना, अब लोग बात से तंग आ गए हैं। हमारे देश में वैसे भी अगर कोई सिर्फ बात ही करे तो हम कहते हैं यार ये बातूनी है, काम कब देखेंगे। और अगर उन्हें मन की बात करनी है तो इस मन की बात में वो कहें कि भाई मैंने ये चीजें आपसे कही थी पिछले एक साल में और ये चीजें हो गई हैं। तब लोग कहेंगे कि मन की बात सिर्फ एक चर्चा का टॉपिक नहीं है, पर जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हमारे देश में। नहीं तो लोग ये मन की बात सुन सुन के पागल हो गए होंगे और तंग आ जाते हैं। पर हमने प्रधानमंत्री चुना है जी, कोई साहिर लुधियानवी तो चुना नहीं।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में आज 11 बजे क्या कुछ कहेंगे, ये तो 11 बजे ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि उनकी हर बात पर विपक्ष और विश्लेषकों की पैनी नजर होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने कुछ ही दिन पहले अपना एक साल पूरा किया है और सरकार कई कार्यक्रमों का आयोजन करके इसका जश्न भी मना रही है। संदीप राय, बीबीसी दिल्ली।
उत्तराखंड में भीषण प्राकृतिक आपदा की दूसरी बरसी आ रही है और इस बार राहत और पुनर्वास के काम से ज्यादा चर्चे उस घोटाले के हो रहे हैं जो आपदा के बाद राहत और बचाव के नाम पर प्रभावित इलाकों में हुए हैं। अलग अलग मदों में मोटे खर्चों के बिल एक आरटीआई याचिका के जरिए सामने आए जिसमें पता चलता है कि ये लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला है जो कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की मौज मस्ती रहने खाने और आवाजाही के नाम पर किया। राज्य सूचना आयोग ने इस घोटाले पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिलहाल मुख्य सचिव को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। देहरादून से शिव जोशी की ये रिपोर्ट।
राज्य के रूप में उत्तराखंड भले ही करीब 15 साल पुराना हो लेकिन घोटालों के मामलों में लगता है ये किसी से पीछे नहीं। बीजेपी सरकारों के बाद अब कांग्रेस की दूसरी पारी की सरकार का कार्यकाल भी एक घोटाले की चपेट में आता दिख रहा है। 16-17 जून 2013 को जब उत्तराखंड में प्रलयंकारी आपदा आई थी उस समय मुख्यमंत्री पद पर विजय बहुगुणा विराजमान थे। आपदा के दौरान और उसके बाद राहत के लिए तैनात अफसरों और कर्मचारियों के अनाप शनाप खर्चों के ब्यौरे स्तब्ध कर देने वाले हैं। राज्य सूचना आयुक्त अनिल शर्मा,
बिल वाउचर उनको नहीं मिले, जब वो यहाँ शिकायत में आए, आयोग ने जब सख्त कदम उठाया तब हमको जो है कुछ पत्रावलियां मिली हैं। बहुत से बिल ऐसे आए हैं कि जिसमें शुरू बाद में करा गया, खत्म पहले ही हो गए, वो ऐसे बहुत सी चीजें आई हैं।
घोटाले का रूप बिहार के कुख्यात चारा घोटाले से मिलता जुलता है। मिसाल के लिए थ्री व्हीलर स्कूटर और मोटरसाइकिल में ईंधन के रूप में डीजल, आधा लीटर दूध का बिल 194 रुपए, एक आदमी का एक दिन का खाना 900 रुपए। एक ओर आपदा से त्राही त्राही का हिला देने वाला माहौल था तो दूसरी तरफ मटन चिकन अंडा करी और पनीर के बेशुमार बिल थे। हेलीकॉप्टर का बिल भी चौंकाने वाला था। आपदा के दौरान राहत कार्य के दौरान के काम को लेकर एक याचिका आरटीआई एक्टिविस्ट भूपेंद्र कुमार ने डाली थी। उन्हें जवाब तो जो मिले सो मिले, बिल जो मिले उनसे पूरी कहानी से पर्दा उठ गया। सुनिए क्या कहते हैं भूपेंद्र कुमार।
हाँ, बिल सारे प्रमाण है, हजारों लाखों रुपए के बिल खाने के और अधिकारी के एक एक दिन में होटल में ठहरने का 6,750 रुपए बिल है एक आदमी का और पर व्यक्ति खाने का बिल है 900 रुपए रोज का। ऐसे मेरे को उसमें कुछ नंबर उनके मिले हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल के और थ्री व्हीलर के, उनमें डीजल डलवाएगा।
मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए ये काटो तो खून नहीं की स्थिति है, कहां तो वो बढ़ चढ़कर आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे और कहां ये सनसनीखेज खुलासा। सूचना आयोग ने सिफारिश तो सीबीआई जांच की है लेकिन मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को जांच का जिम्मा सौंपा है। राज्य के मुख्य सचिव एन रविशंकर,
निर्देश के आधार पर मैं शुरू करूंगा और निस्संदेह जहां पर जांच होना है मुझे कुछ विशेषज्ञों की भी सम्मिलित करने की जरूरत है, यथा आवश्यक है मैं उसमें अपना टीम का चयन करके अग्रतर कार्रवाई करूं।
2013 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में हजारों जाने गई थी और बड़े पैमाने पर स्थानीय लोग बेघर हो गए थे। केदारनाथ तो चमका दिया गया और यात्रा फिर बहाल भी हो गई लेकिन सरकार की कोशिशों पर अब आपदा के दौरान हुए घोटाले का प्रेत भी मंडराने लगा है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गमांग ने कल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। भुवनेश्वर में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। 9 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके गिरधर गमांग वही नेता है जिन्होंने वर्ष 1999 में वाजपेयी सरकार के विश्वास मत के विरोध में वोट डाला था। भुवनेश्वर से संदीप साहू।
देश में आज भी अगर कहीं गिरधर गमांग की चर्चा होती है तो अनायास ही उस किस्से का जरूर जिक्र होता है जिसमें उनके एक वोट के कारण सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। इसे विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि कल कांग्रेस के साथ अपना 43 साल पुराना रिश्ता तोड़ते समय खुद गमांग ने भी उसी किस्से का जिक्र किया। उनका कहना था कि पार्टी के आदेश के अनुसार लिए गए इस कदम के लिए उन्हें पिछले 16 सालों में काफ़ी जिल्लत उठानी पड़ी लेकिन पार्टी ने उनका बचाव नहीं किया बल्कि बार बार उन्हें अपमानित किया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रसाद हरिचंदन ने गमांग के इस आरोप को निराधार बताया है। आज 17 साल बाद उनका ये पश्चाताप निराधार है। इस पश्चाताप का क्या आधार है? आज वे कह रहे हैं कि उन्हें अपमानित किया गया है, लेकिन पार्टी ने डॉक्टर गिरधर गमांग को कभी अपमानित नहीं किया। केवल प्रसाद हरिचंदन ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रेक्षकों का भी मानना है कि गमांग की नाराजगी का कारण कुछ और है। दरअसल पिछले साल कोरापुट लोकसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार चुनाव हारने के बाद से ही वे नाराज हैं। कोरापुट से लगातार 9 बार जीतने वाले गमांग को लगता है कि उन्हें हराने में राज्य कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। गमांग के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि वे किस पार्टी में जाएंगे। वैसे उनके बेटे शिशिर गमांग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे भाजपा में योगदान करेंगे, लेकिन खुद गिरधर से इस बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था, मैं किसी पार्टी में योगदान करने के लिए पार्टी नहीं छोड़ रहा। हाँ, अगर कोई पार्टी मुझे लेना चाहती है तो मैं इस पर विचार जरूर करूँगा, लेकिन मैं खुद किसी पार्टी का दरवाज़ा नहीं खटखटाऊँगा। अपने लंबे राजनैतिक कैरियर और ऊंचे ओहदों के बावजूद अपनी सादगी बनाए रखने वाले गमांग जिस पार्टी में भी जाएं, उसे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वे आदिवासियों के एक माने हुए नेता हैं और हार के बावजूद कोरापुट संसदीय क्षेत्र में एक तगड़े नेता हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भले ही ये दावा कर रहे हों कि गमांग के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे पहले से ही खस्ता कांग्रेस की हालत कुछ और खस्ता हो जाएगी। संदीप साहू, BBC भुवनेश्वर।
भरोसा वही, बस जमाना बदला। राजनीति वही, बस शासक बदला। BBC हिंदी वही, बस प्रोग्राम बदला। BBC हिंदी के कार्यक्रम अब नए रंग और नए कलेवर में। एक जून से नमस्कार भारत का दूसरा अंक हो जाएगा विश्व भारती और दिन भर का दूसरा अंक कहलाएगा घटना चक्र। सुनिए सुबह 6:30 से 7 तक नमस्कार भारत और 8 से 8:30 विश्व भारती, शाम 7:30 से 8 दिन भर और 9:30 से 10 तक घटना चक्र।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत सुशीला सिंह के साथ, और अब हो चला है समय समाचार पत्रों की समीक्षा का। अमल अखबारों के साथ स्टूडियो पहुंच चुके हैं। अमल, क्या कहते हैं आज के अखबार?
सुशीला, आज के अखबारों की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने नरेंद्र मोदी की खबर को अपना शीर्षक बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि सूटकेस से तो बेहतर है मोदी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने शीर्षक लगाया है कि PM ने कहा लैंड बिल जिंदगी और मौत का मुद्दा नहीं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश भर में बढ़ रही गर्मी को अपनी मुख्य खबर बनाया है। TOI का शीर्षक है, आप अब तक की 5वीं सबसे खतरनाक हीट वेव का सामना कर रहे हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया का
जी, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। और जैसे कि आपने देखा है पिछले कुछ समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अब तक लगभग 2000 लोग इस हीट वेव से मारे जा चुके हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी की भी एक खबर ली है जिसको उन्होंने कुछ अलग शीर्षक दिया है। वो लिखते हैं कि मोदी केरल स्थित देश की सबसे पुरानी मस्जिद की यात्रा कर सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि भाजपा और कांग्रेस के विरोध के बाद आम आदमी पार्टी निगरानी यंत्रों को खरीदने के मुद्दे पर कुछ नर्म पड़ी है। दूसरी तरफ नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान हिंदी और अमर उजाला ने ज़मीन अधिग्रहण पर तीसरे अध्यादेश को मंजूरी मिलने को अपनी मुख्य खबर बनाया है। वहीं NBT में एक और खबर है जिसके अनुसार अब दिल्ली में पानी पर पर्यावरण शुल्क वसूला जाएगा। वहीं दैनिक जागरण ने खबर प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है, कल से ज़्यादा सेवा कर चुकाने को रहें तैयार। इसके अनुसार प्रॉपर्टी पर 3.5% से सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। वहीं हिंदुस्तान हिंदी के अनुसार पिछले एक साल में गर्मी से मरने वालों की संख्या 60% की बढ़ोतरी उसमें हुई है। तो वहीं अमर उजाला की मुख्य खबर का शीर्षक है, नेस्ले अमिताभ व माधुरी पर केस। इसमें आपको याद होगा मैगी को लेके जो भी विवाद चल रहा है उससे जुड़े अमिताभ और माधुरी इसके कुछ काफ़ी सारे एड्स कर चुके हैं मैगी से, तो इस वजह से उनको भी इस पे इनके ऊपर उनको नोटिस जारी किया गया है
जी। और माधुरी दीक्षित ने सफाई भी दी है, आप तो मैगी नहीं खाते अमल?
नहीं, मैं मैगी बहुत अब मैंने कम कर दी है मैगी खाना जब से इस तरह की रिपोर्ट आई है जी बिल्कुल। वहीं दैनिक जागरण में एक खबर है, अधिकारों की जंग पर जेटली ने दिखाई केजरीवाल को हद। इसमें दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो अधिकारों को लेकर जो जंग चल रही है उस पर अरुण जेटली ने टिप्पणी की है और उनको कहा है कि वो अपनी उनकी सरकार जो है वो अपनी हद में रहें अभी। और फिर एक और खबर है दैनिक जागरण में ही जिसके अनुसार अभी और इंतज़ार कराएगा मानसून। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी खबरों की बात करें तो अमेरिका और यूरोप पर बरसे ब्लैटर, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि उनकी फीफा को उनका नाम ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें, खेल के खबरों की बात करें तो उसमें नाडाल और नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में पहुंच गए।
इस खबर को भी तरजीह दी है कई अखबारों ने। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए अमल आपका। और न्यूज़मेकर्स में इस हफ्ते हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आनंद एल राय से, जिन्होंने तनु वेद्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया है। दर्शकों ने इस फिल्म को काफ़ी सराहा है और यही वजह है कि इस फिल्म ने एक हफ्ते में मोटी कमाई भी कर ली है। आइए मिलते हैं आनंद एल राय से।
आज मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के डायरेक्टर आनंद एल राय। यस, और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स ने 70 करोड़ रुपए कमा लिए भैया, एक हफ्ता हो गया है। और पीकू के 20 दिन हो गए हैं और उसने भी 70 करोड़ रुपए कमाए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, 70-70 हो गया सर, हाउ आर यू फीलिंग?
यार ऐसे कम्पीट मत कराओ, खुशी इस बात की है कि फिल्में चल रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए होता। बस यही बहुत है कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा वार्म्थ मिल रहा है, और क्या चाहिए।
जिस तरह कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक डायरेक्टर को एक फिल्म बनाते हुए हमेशा लगता है कि हाँ ये फिल्म अच्छा करेगी अच्छा करेगी अच्छा करेगी, पर वो अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करके रखता है कि कहीं कहीं ये फिल्म 1% ना चले तो मैं कोप अप कैसे करूंगा उसके साथ। मतलब अब तो माशाल्लाह फिल्म बहुत अच्छी चली है आपकी, पर कभी जब ना चलती तो तब उस फेज में आप क्या करते?
भाई मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा लड़ता नहीं हूँ इन चीज़ों को लेके। मुझे फिल्म बनाने में मज़ा आता है, मुझे कहानी सुनाने में मज़ा आता है और मैं उसका पूरा मज़ा लेता हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने अपने डायरेक्टर को, अपने अंदर के डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। बस इतनी कोशिश की है कि जिनके लिए फिल्म बना रहा हूँ उन तक दिल से पहुँचूँ। अगर वो हो जाता है उसके बाद नतीजा कुछ भी हो, अगर मैंने अपना 100% दिया है उसके बाद मैं सुकून में होता हूँ यार।
You're at peace.
I'm at peace.
तो मतलब अब मुझे कहना चाहिए कि अपने अंदर के डायरेक्टर को आप सीरियसली लेना शुरू कीजिए क्योंकि आपने रांझना, तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न जैसी कमाल की फिल्में दी हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, इतने सारे नए कैरेक्टर्स भी इस बार आपने फिल्म्स में डाले हैं तनु वेड्स मनु रिटर्न में, मतलब आप कैसे फिक्स करते हैं? 4 साल लगे मेरे ख्याल से ये फिल्म बनने में, तो ये कैसे आप प्लॉट फिट करते हैं या दिन पर दिन बैठ के कि इसमें ये घुसाएं या इसमें ये करें, यहाँ पर ये ऐड कर देते हैं, वो प्रोसेस क्या हुआ करता था आपका?
टू बिगिन विद प्रोसेस, पहले तो सोच। जब तनु वेड्स मनु आई तब मैंने इमिजिएटली तनु वेड्स मनु 2 नहीं शुरू की, वो प्रोसेस का हिस्सा है। मुझे एक तरह की ज़िंदगी जीनी थी उसके बीच में, ज़रूरी था। एक कहानी सुना के हटा था जो अपने आप में पूरी थी और इमिजिएटली अगर मैं उसके पार्ट 2 की बात करूं तो वो बहुत आसानी से कहा जा सकता था उसके लिए कि यार आप एक सक्सेसफुल फिल्म को इनकैश करने जा रहे हैं, जो कि मेरा कभी भी ये रिटर्न्स बनाने का भी रीज़न वो नहीं था कि वो एक कहानी, मेरा रीज़न कोई जो होता है वो सिर्फ कहानी सुनाना होता है
जी।
ये कहानी अच्छी है, ये ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। तो मैंने तनु वेड्स मनु के और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बीच में रांझना बनाई। उसकी वजह ये थी कि मुझे अपने आप को एक दुनिया से पूरा का पूरा निकालना था और कहीं और से होके आना था,
डिटैच करना था आपको।
मुझे डिटैच करना था और अपने आप को एक जिंदगी देनी थी और जीने के लिए, जो कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे एक्टर्स के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी था, ताकि मैं जब वापस आऊँ इस पे तो मेरे पास कुछ हो, कुछ मैं अपने अंदर का भरपूर निकाल के दे सकूँ। वो तभी हो सकता है जब आप कुछ जी चुके हैं, और रांझना मैंने फिर से जी, फिर मैं आया रिटर्न्स में, तो शायद मेरे पास कुछ अच्छा इमोशन था देने के लिए, कुछ अच्छा बोलने के लिए था, कुछ अच्छा करने के लिए था जो अब आप देख रहे हैं।
और इतने सारे एक्टर्स हैं इस फिल्म में, जिमी शेरगिल वापस आए हैं, मतलब सेम एक्टर्स रिटेन किए हैं आपने, पर फिर भी बात सिर्फ कंगना रनौत की होती है।
हाँ।
ना कोई आर माधवन के बारे में बात करता है, ना कोई जिमी शेरगिल के बारे में बात करता है, और ना कोई दीपक डोबरियाल के बारे में बात करता है। लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत ले जाती है।
नहीं, वो उसमें मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अपने सारे एक्टर्स को दूंगा जिन्होंने जिन्होंने ये कहानी सुनी, और ये मानते हुए कि ये उस कहानी का एक्सटेंशन है, और इस कहानी में एक लुक अलाइक का, जो तनु की लुक अलाइक का कैरेक्टर है, वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, और वो कहानी सुनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज एक्टर्स, चाहे वो माधवन हो या जिमी हो या दीपक हो, दीपक डोबरियाल हो या सौरा भास्कर हो या एजाज खान हो, कि इन लोगों ने मेरी नीयत को समझा कहानी सुनाने की, और ये मानते हुए कि इसमें कंगना का डबल रोल है पर ये कहानी है, इसमें ये चीज़ें इस तरीके से होंगी, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी एक एक एक्टर की अपनी तरह की जीत है।
तो कैसी लगी आपको तन्नु वेड्स मन्नु रिटर्न्स के निर्देशक आनंद एल राय के साथ हुई ये खास बातचीत? अपनी राय बताने के लिए आप हमें लिख सकते हैं बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003 पर।
निर्देशक आनंद एल राय से बात कर रहे थे विदित मेहरा, और अब सुन लेते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं, जहां पुरुष एकल वर्ग का फाइनल शीर्ष वरीयता हासिल चीन के चेन लॉन्ग और डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन के बीच खेला जाएगा, जबकि महिला एकल वर्ग के फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मरीन चीन की शिजियान वांग का सामना करेगी। पांचवीं वरीयता हासिल शिजियान वांग ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भारत की साइना नेहवाल को भी मात दी थी, जिन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। उधर रोला गैरा की लाल बजरी पर खेले जा रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में छठी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल ने कल तीसरे दौर में रूस के आंद्रे कुज़नेत्सोव को 6-1, 6-3, 6-2 से बात दी। उनके अलावा पुरुष एकल वर्ग में ही शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के थानासी कोकिनाकिस को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। उनके अलावा तीसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे, फ्रांस के जेरमी चार्डी और अमेरिका के जैक सॉक भी अपना अपना मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। वहीं महिला एकल वर्ग में चौथी वरीयता हासिल चेक गणराज्य के पेत्रा क्विटोवा ने रोमानिया की इरेना कैमिलिया बेगू को 6-3, 6-2 से हराया। बेल्जियम की एलिसन वॉन, इटली की सारा ईरानी और जर्मनी की जूलिया जॉर्जिस भी अपने अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रही। वहीं लीड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के पहली पारी में बनाए गए 350 रन के जवाब में 5 विकेट खोकर 253 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एडम लिथ ने अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में शानदार शतकीय पारी खेलते हुए 107 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान एलिस्टियर कुक ने 75 रनों की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी हुई। स्टंप के समय इयान बेल 12 और विकेट कीपर जॉस बटलर 6 रन बनाकर खेल रहे थे। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने 63 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले कल न्यूजीलैंड की पहली पारी 350 रन पर समाप्त हुई। न्यूजीलैंड के टॉम लैथम ने 84, लियो क्रॉन्की ने 88 और मार्क क्रेग ने नाबाद 41 रन बनाए। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 109 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड अभी भी न्यूजीलैंड से 97 रन पीछे है और उसके 5 विकेट बाकी हैं।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त, और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। सीरिया के अलेप्पो प्रांत में सरकार ने कथित रूप से हेलीकॉप्टर से बैरल बम गिराया, जिसमें 72 लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्रिटेन स्थित एक मानवाधिकार संस्था ने इसकी पुष्टि की है। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में हुए एक आत्मघाती बम विस्फोट में 26 लोग मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार हमले में 28 लोग घायल हुए हैं। यह हमला मैदुगरी में एक मस्जिद में हुआ। स्वीडन की विदेश मंत्री मार्गेट वॉलस्टॉम ने रूस द्वारा यूरोपियन यूनियन के लोगों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर जवाब मांगा है। इस सूची में स्वीडन के भी 8 नागरिक और कई देशों के नेता और राजनयिक शामिल हैं। वेनेजुएला में हजारों नागरिकों ने राजधानी कारकास में एक शांति मार्च निकाला। यह सभी लोग पिछले एक साल से जेल में बंद विपक्षी नेताओं को छोड़े जाने की मांग कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आपसे 8 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।